العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المولى عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. हम जो सना का मुस्तहक वो लब है जिसकी सिफत ये है कि वो अकबर है। दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में जीने का सलीका बताया और आखिरत में सही मंजिल को पाने का रास्ता बताया। वो ज़ाते गिरामी जिनकी वजह तक आज हमने रब को सही तरीके से पहचाना है, जिन्होंने मसाइल बर्दाश्त करके, जिन्होंने लोगों के तानों को, लोगों की गालियों को, लोगों की अजियतों पर सब्र करके दीन हक हम तक मुकम्मल तरीके से पहुंचाया, जिन्होंने ताइफ में पत्थर खाकर भी उम्मत की हिदायत के लिए दुआ की, अजियत पे सब्र करके उन तक हक पैगाम को पहुंचाया, हम पर फिर फर्ज होता है कि हम ऐसी जात से मोहब्बत को अपना ईमान समझे, जैसा कहता कुरान करीम ने समझने को कहा है। यकीनन यह हमारे ईमान के अंदर इजाजे की दलील होगी कि जब बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से की जाए तो हमारे नबी ने और आप पर दुरूद और सलाम पढ़े, यकीनन यह हमारे लिए मोहब्बत की दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और हमारे कान, हमारे दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हो, दिल में आपसे मिलने की तमन्ना जाग उठे, मोहब्बत से हमारे दिल लरज जाए, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दलील होनी चाहिए। मेरे भाई और बुजुर्गो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को तीन दर्जात में तकसीम किया है, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस को मुख्तलिफ अल्फाज के जरिए बताया। पहला ईमान जिसको असल ईमान कहते हैं, अगर वो खत्म तो इंसान मोमिन से मुशरिक हो जाता है, ईमान से कुफ्र की हालत में चला जाता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद, वहदानियत और उस जैसी दूसरी चीजें जो ईमान की बुनियाद समझी जाती है, दूसरी वो चीजें जो ईमान की कमालियात समझी जाती है, यानी अगर वो है तो ईमान मुकम्मल है और अगर वो नहीं है तो ईमान नाकिस है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मॉल से, मेरी बीवी से, हर एक चीज से सिवाय मेरी जान के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ उमर, तुम्हारे ईमान के अंदर कमी है। उस जात की कसम जिसके हाथ में इस मोहम्मद की जान है, तुम तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक के मुझे अपने आप से ज्यादा महबूब न करो। मुतनब्बा हुए, समझ में आई बात, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी नफ्स से भी ज्यादा महबूब है। कहा अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में का कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के मेरी मोहब्बत दुनिया की, माल की, अहल की और तमाम लोगों की मोहब्बत में फौजियत न ले जाए। लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, लफ्जी मोहब्बत की और मोहब्बत का शोरा किया। बाजारों में निकलकर, चौराहों पर निकलकर, लोगों के जमघटों में महफिलें मुनाकत करके अल्फाज के जरिए अपनी मोहब्बत को साबित करना चाहा। हमने समझा कि मोहब्बत हमारा ईमान है और ईमान बंदे और रब के दरमियान में होता है, हमें शोर करने की जरूरत नहीं है। लोगों को यह बतलाने की और जतलाने की जरूरत नहीं है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत को रब जानता है, यह हमारे लिए काफी है। हमारी मोहब्बत को रब जानता है कि हमने ईमान समझ के मोहब्बत किया है, हमारे इस ईमान के कबूल होने के लिए इतना काफी है कि हमारा रब जानता है। हमें चौराहों पर निकलकर ऐलान करने की जरूरत नहीं है। क्या माशी के रसूल है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत की अलामत ये नहीं बताई कि लोग तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब समझने लगे। अल्लाह ने मोहब्बत की अलामत ये बताई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, पैरवी, सुन्नत के पीछे चलना और सुन्नत पे अमल करना, उनके अकीदे के मुताबिक अकीदा रखना और उनके ईमान के मुताबिक ईमान रखना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। लफ्जी दावा अबू तालिब ने भी किया, लफ्जी दावा मुनाफिकीन ने भी किया था। अल्फाज की बुनियाद पर अगर किसी के मोहब्बत को रब कबूल करता तो अबू तालिब की मोहब्बत को कबूल करता। जिसने मरते दम तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट बनाई की, अपने अंदर में अपनी हिफाजत में रखा, अपने घर में रखा, नशो नुमा की, क्या काम किया उस मोहब्बत ने, जिस मोहब्बत ने उनको इत्तबा नहीं सिखाया, उस मोहब्बत ने उनको क्या फायदा पहुंचाया। रब ने कहा चलो बहुत कुछ किया है, हम जहन्नम से आजाद नहीं कर सकते लेकिन इतना कर सकते हैं कि जहन्नम में हल्का आजाद देंगे। मोहब्बत मुशरिक को मोमिन नहीं बना सकती, मोहब्बत मुनाफिक को मोमिन नहीं बना सकती। लाजिम है कि दावे के साथ साथ चलना होगा पीछे। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैं चंद एक बातें बयान करना चाहता हूं और यकीनन वक्त मेरे पास बहुत कम है। میں مختصر وقتوں میں تین سے چار باتیں بیان کر کے مثال اور اس کے ساتھ کچھ جو قابل غور باتیں ہوں گی وہ سب بیان کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اشد الناس حبی من اشد الناس حبا، مجھ سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے وہ بھی ہوں گے، یکونون بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یود احدہم، ان میں کا کوئی چاہے گا کہ اپنا جا اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دے اور صرف میرا ساتھ، میری صحبت، میرا دیدار کر لے، دنیا پوری کی پوری قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا میری محبت میں، صرف میرے دیدار کے لیے۔ غور کریں، کیا ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نے ہمارے دل کے کسی گوشے میں اس خواہش کو جنم دیا کہ کاش کہ آج یا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوتی، دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آج ہمارے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں موجود ہیں کہ جن کو کرنے سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زبان کو صرف نہیں ہلایا، ہم نے اپنے دل کو بھی حرکت دی، ہمارے دل میں کبھی اس خواہش نے جنم لیا، کبھی یہ عزم پختہ ہوا کہ اگر رب کی راہ میں ضرورت پڑی تو ہم اپنا پورا کا پورا مال قربان کر دیں گے، ہمیں فقر و فاقہ کا خوف نہیں آئے گا۔ آج اگر ہم سے رب کے گھر کی تعمیر کے لیے یا رب کے دین کی نشر و احسان کے لیے تھوڑا سا مال طلب کیا جاتا ہے، دل میں خوف آتا ہے کہ اگر تم نے اپنے جمع کرتا مال میں سے کچھ دے دیا تو کم ہو جائے گا، تمہارے
لیکن میں نے اپنے والد کو دیکھا،
मोहब्बत है। और याद आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत की खबर सुनकर अहले मदीना हथियारों से लैस होकर हर दिन सुबह सुबह निकल कर आते थे, और मदीना जहां गर्मी अपनी शिद्दत पर पहुंच जाती है वहां के तपते हुए सहरा में दिन ढलने तक आपका इंतजार करते, अगर नहीं आते तो मायूस होकर वापस लौट जाते। आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तो नहीं हो सकती, लेकिन आज उनकी आमद जरूर होगी जिन्हें अल्लाह के नबी ने वारिसीन अंबिया कहा है। आज उनकी आमद की खबर मिल सकती है और मिलती है जिन्होंने अंबिया के दावत को, अंबिया की दावत और उनके इल्म को अपने कांधों पर उठाया। लेकिन हमारी मोहब्बत पर सवाल पैदा होता है कि क्या हमने भी अहले मदीना की तरह किसी आलिम की आमद पर मोहब्बत के जज्बे में उनका इस कदर इंतजार किया हो कि लोगों से पूछते फिरते हो कि आलिम कब आ रहे हैं, दर्द उनका कब हो रहा है। क्या हमने किसी आलिम के दर्द को सुनने के लिए धूप की शिद्दत और गर्मी को बर्दाश्त करके इल्म हासिल करने की जस्तजू की है? क्या हमने इल्म हासिल करने के लिए बरसती बारिश को खातिर में ना लाकर इल्म की मजलिस में शिरकत की है? क्या हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनके लाए हुए इल्म की मोहब्बत में कभी अपनी तिजारत में खसारा और घाटा बर्दाश्त किया है? ऐसा लगता है कि जैसे धूप नहीं आग बरस रही हो और हम गोश्त के नहीं, हम प्लास्टिक के बनाए गए कि बकौल शायर के ख्वाब गांवों से निकलते हुए डरते क्यों हो, धूप इतनी तो नहीं है कि पिघल जाओ। मेरे भाई ये बातें और भी बहुत हैं, लेकिन मैं दो बातें कहकर अपनी बात मुकम्मल करता हूं और उसके जरिए मैं खुद को और अपने बुजुर्गों को और अपने भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, यकीनन दुनिया में सिर्फ एक फिरका है जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये शर्फ हासिल है कि वो जन्नती है, वो हक पर है। उसने अपनी जिंदगी का मकसद, अपने पिनपने का मकसद, आगे बढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस दीन के नशो निशान समझा है। उस जमात को कई सलफी, कई अहले हदीस और कई दूसरे लफ्जों से पुकारते हैं। यकीनन माजी इस जमात का बहुत कारिंदा रहा, लेकिन हाल उस कदर ही जिम्मतों से भरा हुआ। और वजह जानते हैं क्या? हम गौर करें, आज से 50 साल पहले जब अहले हदीसों को पहचाना जाता था कि दाढ़ी बड़ी होगी, कटी हुई नहीं होगी, सर पे टोपी और कपड़ा टखने से ऊपर होगा, यह अहले हदीसों की पहचान थी। आज हमारी पहचान क्या बन गई है हम जानते हैं। पहले हम अहले हदीसों की पहचान थी कि बात नरमी, बात करे तो ऐसा लगता था जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی طریقہ سیکھا ہے، اور کوئی غصہ ہو تو ہم انہیں دعا دے کر ان کے غصے کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ ہمارے اندر صفت تھی کہ ہم جماعت کو اور جماعت کی محبت کو ذاتی انا پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ہمارے اندر یہ صفت تھی کہ ہم ذات کو نیچا کر لیتے تھے، شخصیت کو نیچا کر لیتے تھے، لیکن جماعت کا خسارہ برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ شخصیتیں، جماعتیں آج ہے، کل ہے، 7 سال ہے، اس کے بعد نہیں رہیں گی، لیکن یہ جماعت انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گی، اور اس جماعت کو حق پھیلاتے رہنا ہے۔ ہم نہیں رہیں گے، ہمارے بعد دوسرے آئیں گے۔ اگر ہم نے اچھا کام کر کے، اچھا اخلاق پیش کر کے اس جماعت کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، حصہ نہیں لیا، اللہ رب العالمین دوسروں کو لائے گا جو اس کام میں حصہ لیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم نہیں بڑھے اور کوئی آئیں گے، ہمارا نام تاریخ کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں ہوگا، ہمارا نام عزت کے ساتھ نہیں لیا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اچھے کام کر کے، جماعت کے آگے بڑھنے کا کام کر کے، جماعت کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر کے، جماعت کی محبت میں اپنی انا کو چھوڑ کر کے ہم بھی خیر کے کام میں حصہ لیں اور خیر کے کام کو آگے بڑھائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم علم سے جڑے، اپنے اندر اچھی صفات پیدا کریں، اخلاق کو بہتر کریں، دوسروں کو دعوت دیتے وقت اپنا اخلاق بہتر کریں، غصے کی صفت کو ختم کریں، تبھی جا کر ہماری دعوت دوسروں کے نزدیک مقبول ہوگی، تبھی جا کر یہ اہل حدیث آگے بڑھیں گے، یہ جماعت پلٹے گی، یہ جماعت آگے بڑھے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین۔ واقعہ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔